فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پس جب آئے جادوگر قالو وہ بولے لفرعون فرعون سے ائنا لنا لاجرن کیا ہمیں اجر ملے گا کیا ہمیں انعام ملے گا کیا ہم کو جو ہے وہ کچھ ملے گا بھی کیا ملے گا ان کنا نحن الغالبین اگر ہم غالب رہے اگر ہمیں فتح ہو گئی اگر ہم جیت گئے تو پھر کیا ہمیں کچھ ملے گا بھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یوم الزینہ کا دن ہے میلے کا دن اور کتیوں کی قومی عید کا دن. ملک کے گوشے گوشے سے جو ہے وہ میلے ٹھیلے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں تاکہ عظیم الشان جو دنگل ہے عظیم الشان جو مقابلہ ہے اس میں فریقین کی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے. فریقین کون ہیں؟ ایک طرف جادوگر ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں سہرہ تو ہے اور سہرہ تو جو ہے یعنی گویا کہ یہ سہرہ تو جمع کے لیے آیا ہے کہ ساحر ایک جادوگر نہیں تھا بلکہ سہرہ تو بہت سے جادوگر تھے اور یہاں پہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. کیوں؟ قالو وہ بولے, ٹھیک ہے نا, تو سارے جادوگر بولے, کس کو بولے؟ فرعون کو. اور یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ جادوگروں کا فرعون سے بات کرنا, کہاں وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی بستیوں میں اور کہاں اب ان کو یہ وقت میسر ہے اور ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ فرعون سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور پوچھتے کیا ہیں, اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, کیا ہمیں جو ہے وہ اجر ملے گا, کیا ہمیں ہمارا حق ملے گا, ہمیں پھر کیا ملے گا اگر ہم جو ہے وہ غالبین میں شامل ہوتے ہیں. غالب, غالب واحد اور غالبین یعنی جمع, کہ اگر ہم جو ہے وہ غالب آ جائیں سے مراد کیا ہے کہ اگر ہمیں ہم جیت جائیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر کا کیا کردار ہے. پیغمبر ایک ہی اعلان کرتا ہے کہ وما اجریا الا اللہ, کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, ہے نا. اور پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو چکا ہے, وہ اپنے جو مصر کا علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کہاں چلے گئے تھے, مدین, مدین وہ جا چکے ہیں اور لیکن پھر بھی واپس آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا ہے تو کچھ بھی نہیں کہتے, کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے پیغام کو اللہ کے مشن کو لے کر فرعون کے دربار میں جا کر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں. تو یہ ہے ایک پیغمبر کا کردار. لیکن جادوگر جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جمع تو ہو گئے ہیں, ہم مقابلہ تو کریں گے, پہلے ہماری ہم جو مقابلہ کریں گے اس کی قیمت بتاؤ, ملے گا کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ گویا کہ ان کے نظروں میں سب سے زیادہ قدر و قیمت اس بات کی ہے کہ ان کی تنخواہ کیا ہوگی, ان کو ملے گا کیا, کیا مرتبہ اور مقام جو ہے ان کو میسر آئے گا, ہے نا. اب جو ہے جیسے ہوتے ہیں نا پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, جیسے آج کل کی دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی مر رہا ہے لیکن ڈاکٹر کی ایک فیس ہے, آپ وہ فیس نہیں دے سکتے تو مرنے والا مر جائے آپریشن وہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو اتنا خرچہ ہے, ملین بلین جو ہے وہ اس طرح ان کے پاس جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی وہ یہی پوچھ رہے ہیں پیشہ ور لوگوں کی طرح کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا انعام کیا ہے. ان کنا نحن غالبین, اگر ہمیں انعام یعنی اگر ہم جیت گئے. قال نعم, اس نے کہا کہ ہاں, ہاں وانکم اور بے شک تم اذ لمن المقربین, اس وقت تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جو ہے وہ ملک خطرے میں ہے, فرعون پریشان ہے, دوسری طرف جو جادوگر ہیں ان کے کوئی پاکیزہ جذبات نہیں ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اچھا جی اس وقت تو ہمارے جو ہے وہ ملک کی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کی ذلت اور عزت کا مسئلہ ہے، لیکن وہ انعام کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ اور فرعون جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیا یقین دہانی کرتا ہے؟ قالا نام، نام کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بات کر رہا ہے، پہلا کوئی شخص بات کر رہا ہے، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، یعنی انعام تو ہے، نمبر ون نام، تمہیں انعام تو ملے گا، وا اور انکم، بے شک تم سب کے سب، اذن اسی وقت، یکا یک اسی وقت تمہارا یہ مقام ہو جائے گا، لمن المقربین، کہ تم جو ہے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اب مقربین جو ہے، مقرب اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف رابا، قرب، قریبی ہونا، قرابت، ہے نا، پیاروں کے لیے بھی آتا ہے. اور مقربین وہ لوگ جو کہ قریبی لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو وہ کہتا ہے کہ روپیہ پیسہ تو تمہیں ملے گا ہی، اور اس کے ساتھ جو ہے تمہیں دربار میں کرسی بھی نصیب ہو جائے گی. اب جو ہے گویا کہ نوازش یہ ہوگی کہ تم جو ہے شاہی مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ فرعون اور اس کے جو جادوگر ہیں ان کا جو ہے وہ اخلاق کیسا ہے، اور کہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جادوگر جو ہیں اپنے باپ دادا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی عزت کی خاطر جمع ہوئے ہیں، لیکن حوصلہ اتنا کم ہے ان کا، اتنی کم حوصلگی ان میں پائی جاتی ہے کہ باپ دادا کے دین کو بچانے کی خدمت میں بھی پہلے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، ہے نا، کچھ انعام تو ملے گا نا، تو ملے گا کیا. اور دوسری طرف جو ہے وقت کا پیغمبر جو ہے اس کا کردار کیسا ہے؟ کہ ایک کسی بھی قوم کا فرد ہے، 10 سال تک قتل کے الزام میں روپوش رہا، ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک تقریباً باہر رہے، اور پھر اللہ جب حکم دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فرعون کے دربار پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب فرعون کہتا ہے کہ میرے پاس تو پلا، تو نے قتل نہیں کیا، تو ایسے میں اپنی غلطیوں کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں میں خطا کار ہوں، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ہے نا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں ہوں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا، اور تو بنی اسرائیل کو جو ہے میرے حوالے کر دے. اب وہ فرعون سے بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، ان کے اندر ذرا سی ادنا سا بھی ان کے اندر تامل نہیں پایا جاتا، اور فرعون جو دھمکیاں دیتا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے کردار کی عظمت. قال لهم موسى، اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، کن کو؟ جادوگروں کو، القو، ڈالو تم، ما انتم ملقون، جو تمہیں ڈالنا ہے، پھینکو تم جو تمہیں پھینکنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جادوگر جو مصر کے اطراف سے ہر سائڈ سے جمع کر لیے گئے تھے، ان کی تعداد کے بارے میں مفسرین بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 12,000 تھی، بعض کہتے ہیں 17,000، بعض کہتے ہیں 19، کچھ کہتے ہیں 30، اور بعض کہتے ہیں کہ 80,000 جادوگر جو تھے وہ جمع کیے گئے تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 80 بھی سمجھے جائیں، وہ کہ اصلی تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا مستند ذریعہ نہیں ہے جسے ہمیں معلوم ہو سکے کہ صحیح تعداد کیا تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پبلسٹی کر کے اور ہر طرح کا انعام کا لالچ دے کر ایک کثیر تعداد جادوگروں کی جمع کر لی گئی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز زوروں پر تھی، عروج پر تھی؟ جادو بڑے عروج پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز عروج پر تھی؟ ادب، عربی ادب، عربی زبان، قواعد و ضوابط، اس کی فصاحت و بلاغت اور شاعری، یہ بڑے عروج پر تھی. تو عرب جو تھے کسی اور کی بات کو تو جو ہے وہ ذرا سا اہم بھی نہیں سمجھتے تھے. اور آج کل ہمارے دور میں کیا چیز عروج پر ہے؟ میڈیا، ایڈورٹائزمنٹ، جو بڑھ کر تھام لے یہ مینا اسی کی ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ ان کی پرواز انہیں تابہ فلک لے پہنچی. ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ خیال اچھا ہے، बाद लोग बहुत नेक हैं, अच्छे हैं, किताबें बड़ी अच्छी हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा पब्लिसिटी है ना, बस लोग उसी के नाम की फिर माला जो है वो जपते हैं, उसी का नाम लिया जाता है। और बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर और अच्छी अच्छी उनकी किताबें और बहुत अच्छी अच्छी उनकी खिदमात वक्त के साथ जो थी वो मिट गई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो है वो उसकी पब्लिसिटी नहीं हो सकी, आम चीज जो थी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में नहीं आ सकी। तो अब बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम डरते नहीं है। आप सोचिए, दुनिया जमा है, एक मूसा अलैहिस्सलाम है और हजारों जादूगर हैं, और आप उनसे कहते हैं कि फेंको जो तुम्हें फेंकना है। आप देखें कि उस वक्त ये नहीं कहते कि इतने ज्यादा लोगों को देखकर डर जाएं या पीछे हो जाएं, उस वक्त भी एक जुर्रत के साथ, एक कुव्वत के साथ आगे होकर कहते हैं कि बताओ तुम्हें फेंकना है कि मैं फेंकूं। तो अब क्या है कि कुफर के मुकाबले में जो है वो कमर जो है वो बांध कर, है ना, आगे आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं बताओ तुम फेंकोगे कि मैं फेंकूं। और इससे क्या बात पता चलती है कि ये भी उनके अंदर जो थी एक जुर्रत थी कि मर्जी है तुम्हारी। क्योंकि जब भी कभी मुकाबला होता है ना, आजकल भी बच्चे खेलते हैं, आप कभी खेलें खेला होगा आपने, तो दो जो जमातें होती हैं या दो ग्रुप जो होते हैं या दो लोग होते हैं, आपस में पूछते हैं कि तुम शुरू करोगे कि हम शुरू करें। और उसमें भी जो कम लोग होते हैं जो किसी को चांस देना चाहें, है ना, और बाजू का तुमको लगता है कि नहीं बाद में हमें मौका मिलेगा तो हम जीतेंगे, बाजू का लगता है नहीं पहले इब्तदा करें तो हमें जो है वो फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप उससे बेनियाज होकर पूछते हैं कि बताओ तुम शुरू करोगे कि मैं शुरू करूं, तुम जो है अपना जादूगर जादू का इजहार करोगे कि मैं करूं। फालकौ हिबालहुम वअसीयहुम, उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने फौरन फालकौ डाल दी हिबालहुम अपनी रस्सियां, वअसीयहुम और अपनी लाठियां। फकालू, और वो बोले बे इज्जत फिरऊना, फिरौन के इकबाल से, फिरौन की इज्जत की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, के हम ही गालिब रहेंगे। अब आप देखिए कि मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है, और यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि जादूगरों ने जब मुकाबला शुरू किया, उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियों को जब डाला तो वो बोलने लगे, साथ ही वो अपने मुंह से कुछ जुमले बोल रहे थे, उनमें से एक क्या था, बेइज्जत फिरऊना। तो बेइज्जत जो है इसमें बा जो है इसके क्या मानी है, मुफस्सरीन की एक राय ये है कि बा के मानी कसम के हैं। तो फिरौन चूंकि उनके हाथ देवता की हैसियत रखता था, इस वजह से वो कोई कदम उठाते वक्त अपने देवता की इज्जत और इकबाल की कसम खाते, है ना, रस्सियां लाठियां तो फेंक दी पांसा के तीरों की तरह, और उसके बाद जो है साथ ही उन्होंने जो है वो कसम खाई कि फिरौन की इज्जत की कसम, गोया के फिरौन का मर्तबा और मकाम उनके हाँ जो है वो बड़ा ही इज्जत का मकाम था। और अब आप देखें कि अगर आज हम अपने मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें तो अब मुसलमानों के यहाँ भी ऐसी कस्में खाई जाने लगी। बड़े अफसोस की बात है, अरब के मुशरिकीन भी कस्में खाते थे और आज मुसलमान भी खाते हैं। वो क्या कस्में खाते हैं मुसलमान, मसलन कोई मुसलमान कहता है कि तेरी तेरे सर की कसम, तेरी दाढ़ी की कसम, तेरे बाप की कब्र की कसम, तेरी बेटी की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे या फिर कोई बादशाह हो तो बादशाह की कसम खा ली। जिसके पास भी जाते हैं उसके पास जाकर कुछ ना कुछ लोग कस्में खाते हैं। ये कस्में खाना जायज नहीं है। क्यों ये कस्में खाना जायज नहीं है कि ये जो है मतलब जैसे अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाएं तो गुनाह मिलता है, तो इन नामों की सच्ची कसम भी गुनाह से कम नहीं है। ये है उलमा की राय कि कस्में जो है वो नहीं खानी चाहिए, और अगर कसम खाएं तो अल्लाह की खाएं, वो भी सच्ची ठीक कसम जो है वो खाएं। तो ये जो है वो गलत बात है। तो बहरहाल उन्होंने फिरौन की इज्जत की कसम खाई, इसका ये मतलब है कि वो फिरौन की इज्जत, उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी हुकूमत, उसकी कुर्सी, उससे बहुत ज्यादा मरूब भी थे और उनको यकीन था कि फिरौन हमारे साथ है, इसकी खुदाई हमारे साथ है। इन्ना लनहनुल गालिबून, हम ही हैं जो कि गालिब होने वालों में से हैं। तो ये थी उनकी कसम खाना और ये था उनका जो है वो दूसरों को यकीन दिलाना। अब आप देखिए कि कुरान मजीद में जो है वो और जगह पे हमें इसकी तफसील जो है वो पता चलती है। यहाँ पर जो है बाकी सारी तफसीलात को छोड़ दिया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से ये फिक्रा निकलता है कि बताओ तुम फेंकोगे कि हम फेंके रस्सी लाठी, तो अब जब जादूगरों ने जो है अपनी रस्सियां लाठियां फेंकी तो यकायक वो बहुत से सांपों की शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम को भागती हुई लपकती हुई दौड़ती हुई जो है नजर आई। कुरान मजीद में इसकी तफसील हमें सूरत आराफ में जो है वो मिलती है, सूरत आराफ में आप पढ़ी चुकी, फलम्मा अल्कौ सहरु आयुनन नासी वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अजीम, जब उन्होंने अपने आंचर फेंके तो लोगों की आंखों को सहर जदा कर दिया, मसहूर कर दिया, सबको दहशत जदा करके रख दिया और बड़ा भारी जादू है वो लोग बना कर लाए। सूरत अल आराफ आयत 116। अब आप देखें कि दूसरी तरफ अल्लाह ताला जो है वो क्या बता रहे हैं, सूरत ताहा में इसका नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा खूबसूरत जो है वो खींचा है। सूरत ताहा आप देख लें आयत 66-66 के, फायजा हिबालहुम व असीहुम युखयालु इलैही मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, यकायक इनके जादू से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि इनकी रस्सियां और लाठियां दौड़ी चली आ रही हैं। ताऊ जैसा फी नफसे ही खीफतम मूसा, इससे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे इससे अपने दिल में डर गए। तो अब आप देख लीजिए, तो तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि मूसा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम क्या करो तुम अपनी रस्सी को अपनी लाठी को जमीन पर फेंको, यानी आपके पास जो लाठी है उसको आप जमीन पर फेंके। तो फिर आयत नंबर 43 से क्या पता चलता है, फअल्का मूसा असाहु, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी अपना असा फेंका, फाइजा यकायक अचानक उसी वक्त हिया वो तलकफु निगलने लगा, हड़प करता जा रहा था, मा या फिकून जो वो घड़ रहे थे, जो कुछ उन्होंने झूठ बना रखा था उसी वक्त इनके बने बनाए खिलौनों को, इनके बने बनाए जो इफ्क है उसको जो है मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने जो है वो निगलना शुरू कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो थी आप पीछे पढ़ ही चुकी हैं के सोबानुम मुबीन, के वो तो एक अजदहा था, लाठी जो थी वो अजदहा बनकर, खौफनाक अजदहा बनकर जो है वो उनको निकलने लगी। तो अजदहा क्या होता है, बहुत बड़ा सांप, जसामत के एतबार से वो सोबान था, अजदहे की तरह था, लेकिन उसके अंदर जो फुर्तीलापन था वो जान का था, जान छोटे सांप की तरह था, क्योंकि छोटा सांप जो होता है फुर्तीला होता है, तेज जाता है, और हैया, हैया जो है सांप की जिन्स के लिए आता है, गोया कि इस जिन्स आप कह सकती हैं कि छोटा था बड़ा था जो कुछ भी, यानी जिसामत के एतबार से बड़ा था, फुर्ती उसके अंदर छोटे सांप की जो थी वो पाई जाती थी। तो वो करने क्या लगा, हिया तलकफुमा या फिकून, कि जो कुछ भी उन्होंने घड़ा था उसको उस सोबान ने जो है वो निगलना शुरू कर दिया। अब आप देख लें कि मा या फिकून, मा या फिकून से क्या बात पता चलती है कि जादूगरों ने जो भी करतब दिखाया, मा जो कुछ भी, जो कुछ भी उन्होंने बनाया, जो कुछ करतब दिखाया, उसको जो मूसा अलैहिस्सलाम की असा थी ना उसने उसको खत्म कर दिया। और तलकफ लाम काफ फा के मानी क्या है, किसी चीज को जल्दी से ले लेना, हाथ से लेने के लिए भी आता है और मुंह के से लेने के लिए भी, जैसे किसी चीज को चबाए बगैर निगल जाना, खाना खाएं तो अकल है लकफ नहीं है, अगर लाम काफ फा है तो आपने खाना तो खाया है पर चबाया नहीं है, चबाए बगैर आप उसको निगल गए, जैसे एकदम किसी चीज को जो है हड़प कर लिया जाए, तो उसके लिए ये चीज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम की असा ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो जो उनका मास्टरपीस था, जो मिस्र के पूरे इलाकों से बेस्ट जादूगर जमा किए गए थे, जो बेहतरीन जादूगर थे, तो उसका हशर जो है वो क्या हुआ कि असाए मूसा ने सेहरो साहिरी के सारे तिलिस्म को, सारे झूठ को, सारे इफ को जो है वो बातिल बनाकर रख दिया, है ना। सूरत अंबिया आयत 18 में भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बल नक्जफू बिल हक्की अलल बातिली फयदमगहू फाइजा हुआ जाहिक। हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, बस वो इसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त जो है वो जाहिक बन जाता है। क्या मतलब? भाग जाता है, नबूद हो जाता है, मिट जाता है। सूरत अंबिया आयत 18। तो अल्लाह ताला हक को गलबा देता है, सुरखुरुई देता है, और बातिल जो है उसको शिकस्त हो जाती है। अब फिरौन ने क्यों लोगों को जमा किया था? वो तो शिकस्त देना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम को, और उसके जो दरबारी थे वो भी शिकस्त देना चाहते थे, लेकिन उल्टा हुआ। और उल्टा क्या हुआ? फाइजा हिया तलकफू मा याफिकून फाउल की सहरतु साजिदीन। इस पर सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। अब देखो, सहरतु जादूगर, सारे जादूगर, क्योंकि यहाँ पे ये जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। फउल किया, अब ये नहीं है कि वो खुद से गिर पड़े, ये माजी मजहूल है, उनको गिरा दिया गया। साजिदीन, सजदे में, गोया के बेख्तियार वो सजदे में गिर पड़े। इसका मतलब ये है कि अंदर से उनके दिल ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के मोजे की हकानियत को तस्लीम कर लिया। उनका दिल अंदर से जो है वो मुसलमान हो गया। और जब उन्होंने ये देखा कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंकी है और उसका जो असर था, तो उन्होंने महसूस किया कि ये जादू नहीं है। उन्होंने हक का एतराफ किया, और ये वजह है कि उन्होंने जो है फौरन अपने ईमान का ऐलान कर दिया। फाउल कियसारतु साजिदीन, सजदा करते हुए जादूगर जो थे उनको गिरा दिया गया, वो सजदे में गिर पड़े। कालू एमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और वो बोल उठे, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर, रब मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का रब। अब वो ये नहीं कहते कि हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, सिर्फ इतना नहीं कहते। अगर वो इतना कहते तो फिर फिरौन भी समझा जा सकता था, क्योंकि दुनिया सारी की सारी और दरबारी और फिरौन तो ये समझता था कि जो है वो मैं हूं आलमीन का रब। तो उन्होंने क्या कहा, एमन्ना बिरब्बिल आलमीन, आलमीन के रब पर हम ईमान ले आए, और आलमीन का रब है फिरौन, तू नहीं है। रब मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान ले आए। तो अब आप देख लीजिए कि यहां पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने वाले, जब उनको शिकस्त हो जाती है, तो चलो शिकस्त हो गई थी, बात खत्म हो जाती कि चलो जी ये हार गए हैं जादूगर, मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए हैं। लेकिन शिकस्त होने के बाद जब जादूगरों ने जो है वो ऐलान कर दिया, जब उन्होंने ईमान लाने का ऐलान किया और सजदे में वो गिर गए, तो इस वक्त इसके मानी क्या थे कि उनका ये इकरार, यौमुज़्ज़ीना के दिन उनका ये इकरार इस बात का ऐलान था कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया है, ये जादू का फन नहीं है, ये कोई मौजज़ा है, और ये काम तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का हो सकता है ना। आप देख लीजिए कि अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही, और जो है वो उन्होंने वाजे तौर पर ये बात कही कि जो है वो आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जो सारे आलम का रब है, हम उस पर जो है वो ईमान ले आते हैं। और अब ये वक्त जो था, ये बड़ा ही अजीब वक्त था, निहायती नाजुक वक्त था, اور فرعون، اس کے درباری، ساری دنیا کے جو مصر کے لوگ تھے وہ تو اس لیے جمع ہوئے ہوئے تھے تاکہ ان کو ایک فتح کی، ایک غلبے کی آس تھی، ہے نا؟ اور اب ایک طرف وہ مغلوب ہو گئے، دوسری طرف مغلوب ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے بھرے مجمع میں قومی میلے کے دن سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا. وہ دن بھی یوم الزینہ کا تھا. زینہ کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے اعتبار سے بھی زینت، بڑی دنیا جمع تھی، دن چڑھا ہوا تھا، چاش کا وقت تھا، ایسا وقت جس میں سورج کی روشنی پوری طرح کھلی ہوئی تھی. ابھی دھوپ بھی زیادہ تیز نہیں ہوتی جب، کیوں؟ انہوں نے طے کیا تھا نا، فجومی السحرۃ لمیقات یوم معلوم. تو یوم معلوم سے مراد یوم الزینہ. اور اب فرعون تو خود چاہ رہا تھا کہ جا کے ایسے لوگ ڈھونڈ کر لائیں، وبس المدائن حاشرین، نقیب، خوب اچھے طرح ذمہ دار قسم کے لوگ، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں. اور ایسے موقعوں میں فرعون چاہتا تھا کہ لوگ مرعوب ہوں گے اور میری جے ہوگی اور میری فتح ہوگی. اور ہوا کیا کہ شکست کے ساتھ، مغلوب ہونے کے ساتھ، جادوگروں نے اپنے دین اور ایمان کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. اب اس وقت جو ہے فرعون جو تھا، آپ سوچیں کہ وہ غصے سے جو ہے وہ بھڑک اٹھا. فرعون جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا. اور اس نے اب یہ، کیونکہ وہ بوکھلا اٹھا، اور صرف بوکھلایا ہوا نہیں تھا، جھنجھلاہٹ میں بھی تھا. صرف جھنجھلاہٹ ہی میں نہیں تھا بلکہ اس سے بھی مزید ایک قدم آخر، ایک قدم آگے کی طرف بڑھا. قال آمنتم، کہنے لگا آمنتم، تم ایمان لے آئے. لہو، اس پر، اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، تم موسیٰ کی بات مان گئے، موسیٰ علیہ السلام، قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. انہو لکبیرکم الذی، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے. لکبیر، لکبیر یہاں پہ صرف مشبہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ یقیناً یہ کوئی تمہارا جو ہے وہ بڑا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ تم نے بات کیوں مانی. ساتھ ہی اب فرعون جو ہے وہ جو تاثر ہے اس کو دھونا چاہتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب جادوگر آپس میں ملے ہوئے تھے. یہ دوسرے جو شہر سے جادوگر آئے نا، پورے ملک سے، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کا بڑا جادوگر ہے. یہ فرعون کہتا ہے انہو لکبیرکم الذی، کہ بے شک وہ ہے، لا بھی جو ہے وہ لام تاکید ہے، البتہ بڑا، سب سے بڑے کے لیے آتا ہے نا، کم الذی، تم میں جادوگروں میں سب سے بڑا. الذی، وہ شخص، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کو مسحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ضدی ہٹ دھرم جو ہے، فرعون ایک سری معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ اقرار نہیں کرتا. جب بازی ہرتی بھی دیکھتا ہے، ایک مزید سیاسی سازش کا افسانہ تیار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تمہارا بڑا تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا. فلا سوف تعلمون، اچھا جلدی تمہیں پتا چل جائے گا. سورت آراف میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا، ان ھذا لمک لمک رم مکر تمو فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس دار السلطنت میں تیار کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. تو اب جادو گروں کی ایمان لانے پر فرعون جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی، یہ ایمان کا معجزہ نہیں ہے، ہے نا؟ یہ ایک ملی بھگت ہے جو انہوں نے آپس میں جو تھی وہ طے کر لی تھی تاکہ ان کو اقتدار مل جائے اور مزے کر کے یہ آپس میں اس اقتدار کا مزہ لوٹے. اب وہ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. تو اب جو ہے ایک طرف فرعون عام عوام کو، دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سازش تھی جو انہوں نے آپس میں تیار کر لی ہے، اور دوسری طرف فرعون جو ہے وہ جادوگروں کو دھمکی دیتا ہے، اور دھمکی بھی خوفناک ترین دھمکی. और वो धमकी जो है वो क्या देता है कि आप देखें, लौकत्ती अन्ना काफ तो ऐन का मतलब होता है कता, काटना, रूफे मुकत्तात वो हरूफ जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, जैसे कटे हुए होते हैं अलग अलग करके जिनको पढ़ा जाता है, और लाम भी लामे ताकीद है, और नून जो है ये भी नूने ताकीद है, और शद जब आती है तकरार भी होती है और शिद्दत भी होती है उसमें। लौकत्तियन्ना मैं जरूर ब जरूर जो है वो तुम लोगों को जो है वो कत्ल कर दूंगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो कत्ल कर देगा, बल्कि क्या कहता है, ऐसे कत्ल करूंगा कि तुम्हारे हाथ हाथों को काटूंगा, तुम्हारे पाओं को काटूंगा, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिन से, यानी उल्टे तौर पर। हाथ पाओं काटने का मतलब क्या है कि दाया हाथ और बायां पैर, या बायां हाथ और दाया पैर, और इसके बाद जो है फिर मैं सूली पर चढ़ाऊंगा। तो अब देखिए, नहीं गोया कि हाथ पैर काटना ये भी तो एक अजाब है ना, हाथ काटा जाए पाँव काटा जाए, और सिर्फ इसी पर उसकी जो है वो गजब की आग ठंडी नहीं होती, इसी पर उसका गुस्सा खत्म नहीं होता, बल्कि और क्या कहता है कि सूली पर लटकाने का ऐलान करता है। ये है उसका इंतकाम। क्या कहता है, वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तुम सबको मैं सूली पर जो है वो चढ़ा दूंगा। और आप ये बात देख लीजिए कि इसका मतलब ये है कि फिरौन जो है वो इस वक्त बहुत ही गुस्से में भी है, और इतनी शदीद सजा का जो है वो ऐलान करता है। लेकिन वो जादूगर जो थोड़ी देर पहले ये पूछ रहे थे, ये मुतालबा कर रहे थे, अन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अब वही जादूगर जो है वो ये ऐलान करते हैं, कालू ला दैरा इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। वो बोले ला दईरा, कोई जो है वो नुकसान नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। दईरा रा तकलीफ नुकसान, नफे की जिद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि हमें तो कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे मसदर के में आया है, दईर मसदर के मानी में, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब तुम क्या करोगे, हम तो ईमान ले आए, तुम हमें मुखालिफ सिमतों से हमारे जिस्म के अज़ा को काटोगे, हमें सूली पर चढ़ाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, हमारी जान ही ले लोगे ना, हमारी जिंदगी को मौत में तब्दील कर दोगे, और हमें मरना तो है ही। इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। हमें अपने रब की तरफ जो है वो पलटना है। मुकाबले से पहले जादूगरों की हालत और थी, इनाम और इकराम का मुतालबा, अब जो है वो सिद्ध के दिल से ईमान ले आए, तो अब क्या है, एक फौरन उनके अंदर एक इनकलाब पैदा हो गया। अब उनके सामने उनकी नजरों में जो है वो कोई भी जो है वो उनकी नजरों में अहमियत नहीं है, वक्त नहीं है, उनको कोई डर नहीं है कि हमें मार दिया जाएगा। उनके किरदार में एक जुर्रत पैदा हो जाती है, उनके किरदार के अंदर जो है एक पुख्तगी आ जाती है, और वो क्या कहते हैं, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, मौत तो आनी है, मरकर अल्लाह की तरफ जाना है, और तुम जब हमें सूली पे चढ़ाओगे, हमारे हमें सजाएं दोगे, तो होगा क्या, मौत ही आएगी ना, तो अल्लाह की तरफ तो जाना ही है। इन्ना नतमा, बेशक हम तमा, तमा के एक मानी लालच के भी होते हैं, एक मानी उम्मीद के भी होते हैं, जैसे किसी बुरी चीज के लिए एक लालच होना, और एक ये कि किसी एक अच्छी चीज का लालच होना, अच्छी चीज का हरीस होना, हम तो ये उम्मीद रखते हैं, हमें तो ये तवक्को है, और तवक्को क्या है, अई यग़फिर लना रब्बुना, कि हमारा रब जो है वो हमें ढांप ले, हमारा रब हमारे हमारी मग़फिरत कर दे। गफरा ढांप लेना, ये जो टोपी होती है ना उसको भी मिगफिरातुन कहते हैं, वो सर के बालों को ढांप लेती है ना, और अल्लाह गुनाहों को ढांप ले, मानी क्या है, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे, गफारा छुपा दे। जैसे आप देखेंगे, आप कॉपी पे लिख रही हैं, आप नोट्स ले रही हैं, आपसे गलतियां हो गई, आप उसको वाइट आउट कर देती हैं, आप उसको किसी चीज से छुपा देती हैं, है तो सही अंदर लिखा हुआ, लेकिन आपने उसको छुपा दिया, गुनाह है तो सही नामा माल में, बड़ी गलतियां की हैं जिंदगी में, لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ ہم جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہم جو قربانی اب دیں گے, اِنَّا نَتْمَعُ وَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا, کہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں بخش دے, ہمیں ڈھانپ لے. کیا چیز ڈھانپے؟ خطایانا, ہماری خطاؤں کو, ہماری لغزشوں کو, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو ہے جادوگر ایسا سچا ایمان لائے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی تکلیف, سخت سے سخت عذاب جو ہے اس کو جھیلنے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے, ہمیں کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جادوگر جن کی پوری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزری, کفر اور شرک میں گزری, جادو کرتے ہوئے گزری, اور جادوگروں میں وہ بیسٹ تھے, یعنی بہترین تھے, سب سے بہترین تھے ملک کے اندر جادو کرنے والے, لیکن اب ایسا ایمان لائے ہیں اور اس ایمان کا ایسا اعلان کرتے ہیں, اس طرح سے اعلان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب جو بھی مصیبت آ جائے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہیں. ان کے اندر یہ بے خوفی کیسے پیدا ہو گئی کہ نہ فرعون سے ڈر رہے ہیں, نہ فرعون کی خوفناک دھمکی سے ڈر رہے ہیں, نہ ان کو کسی نقصان کی کوئی پرواہ ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے, تو جو چاہے کر لے. اِنَّا نَتْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں, اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پورے مجمع میں, پوری دنیا میں اس وقت جو یوم الزینہ کے دن جادوگروں میں اور موسیٰ علیہ السلام میں مقابلہ ہوا ہے, اس میں ہم ایمان لاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اول المومنین. اب فرعون کی قوم تو مسلمان نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے قبول ایمان میں سب کا دکھائی. کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ بھی اس موقع پر پھر ایمان لے آتی ہیں, اور ان کے ساتھ فرعون کی قوم میں سے چند لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مرتبہ ہے جو کہ ساحروں کو میسر آیا, جو جادوگروں کو نصیب ہوا, یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے, یہ جو ہے وہ میرے اور آپ ہر ایک کا مقام نہیں ہے. یہ بلند مرتبہ جو ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا کہ اندر سے وہ دل سے اللہ کے آگے انہوں نے سجدہ کیا کہ اب ان کو کسی نقصان, کسی جو ہے سزا, کسی چیز کی پرواہ نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ان پڑھ شاگردوں سے کہا تھا, جب میرے نام پر تم کو لوگ عدالتوں میں پکڑوائیں گے تو پہلے سے نہ سوچنا کہ کیا جواب دو گے, وقت پر روح القدس خود تمہارے دل میں بات ڈال دے گا. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, کیونکہ یہ وقت بڑا مشکل ہے, اور کس طرح سے بات بنائی جائے کہ میری جان بچ جائے, ہے نا. یا پھر بعض اوقات ایمان کا انسان جو ہے وہ سودا کر لیتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اس وقت جو ہے اللہ تمہیں خود بتا دے گا, فرشتے کے ذریعے خود بتا دے گا, اللہ تعالیٰ خود تمہاری رہنمائی کر دے گا کہ تمہیں جو ہے وہ کیا جواب دینا ہے. تو آئیے میں اور آپ بھی جو ہے وہ سچا ایمان لے آئیں, وہ شعوری ایمان جو جادوگر لائے تھے. اب نہ ان کی نظر میں کرسی کی حیثیت ہے, نہ انعام چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ سزا کا ڈر ہے. یہ ہے کردار کی تبدیلی. ایمان انسان سے ایسے کردار کا مطالبہ کرتا ہے, نہ غرض کسی سے, نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ہے نا. تو سورج کی طرح, اور بالکل کسی چیز سے وہ ڈرتے نہیں ہیں, کسی چیز سے وہ گھبراتے نہیں ہیں, اور جیسے بھی حالات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ جمپ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پریشان نہیں ہوتے کہ اب جو ہے ہمارے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح ہمیں جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے. تو یہ ہے میری اور آپ کی بھی ذمہ داری کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کیا کریں. ہم گردش دوراں سے کچھ اس طرح لڑے ہیں, دیوار بنے دشت تمنا میں کھڑے ہیں, देखो तो हर एक सिमत है फूलों का तबस्सुम, सोचो तो रहे शौक में कांटे भी बड़े हैं, है ना। तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं, वह औहैना, और हमने वही की, इला मूसा, मूसा अलैहि सलाम की तरफ, अन असरी बे इबादी, कि आप रात को रातों रात लेकर चल पड़े मेरे बंदों को। अब आप देखें कि आप पीछे सूरत बनी इसराइल में ये बात पढ़ चुकी कि इसरा के मानी क्या होते हैं, रात के वक्त चलना, कि आप रात के वक्त जो है वो चल पड़े बे इबादी मेरे बंदों को। और मैं तो अक्सर इसी बात पे सोचती हूँ, अल्लाह किन को मेरे बंदे कहता है ना, दुनिया तो सारी अल्लाह की है, नाज तो सारे ही अल्लाह के हैं। जिस दिल में ईमान है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह उनको कहते हैं असरी बे इबादी, कि मेरे बंदों को लेकर चल पड़। कहा किसको है, मूसा अलैहि सलाम को, इन्नकुम मुत्तबाउन, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। अब आप देख लें कि बनी इसराइल की आबादी किसी एक जगह पे जमा नहीं थी, बनी इसराइल की कौम मिस्र में मुख्तलिफ जगह पर आबाद थी, मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ बस्तियों में। और अब मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया गया कि आप बनी इसराइल को लेकर मिस्र की बस्तियों से निकल जाइए। तो अब किस तरह से मूसा अलैहि सलाम ने हिजरत की तैयारी की होगी, तमाम बस्तियों में पैगाम दिया होगा कैसे, कि ये बादशाह जो फिरौन है और जो इसके साथी हैं हर कार्य, उनको भी पता ना चले, हिकमत के साथ, तदब्बुर, दूरंदेशी के साथ, या बनी इसराइल के लोग जो हैं, जो पिसी भी कौम, गुलाम कौम, हजारों साल से गुलामी में चल रही है, तो वो फिरौन से भागकर खामोशी से निकलकर यहां से जा सके। अब अल्लाह ताला ने एक तरफ कहा कि आप रात के वक्त मेरे बंदों को लेकर चल पड़िए, यानी हिजरत का हुक्म दे दिया, खुद भी जाइए मेरे बंदों को भी यहां से ले जाइए। दूसरी तरफ ये भी साथी जो है वो हदायत कर दी कि रात के वक्त लेके जाना, यानी इसका मतलब ये है कि एक रात मुकर्रर कर दी गई और उस रात तमाम मुहाजरीन को निकल खड़े होना था, प्लानिंग उसकी। तीसरी बात जो पता चलती है वो ये कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा, तुम्हारा ताकुब किया जाएगा, है ना, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। जब तुम्हारा पीछा किया जाए तो क्या करना, चलते चले जाना। क्यों, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, इन्नकुम मुत्तबाउन, के तुम्हें जो है वो फॉलो किया जाएगा, तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। आप देख लें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और अहले मक्का ने आपका पीछा किया, आपके भी सर की कीमत लगी। और जो मुसलमानों ने हिजरत की तो किस तरह से हिजरत की, कैसे, काफिर जो थे वो ताकुब में थे। तो अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और फिरौन की तरफ से उनका ताकुब, तो मतलब क्या है कि होशियार रहना। ये जो बताया गया कि ताकुब किया जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि डर जाएं आप, बल्कि क्या है कि इस खतरे से तुम्हें होशियार रहना है, सोच समझ कर हिकमत के साथ जो है वो तुम्हें रातों रात अपना सफर इस हद तक तय कर लेना कि जब वो तुम्हारा पीछा करें तो बहुत आगे को निकल चुके हो। फारसला फिर औनू फिल मदाइनी हाशरीन। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर निकल खड़े होते हैं तो फिरौन ने क्या किया, मदाइन मदीना की जमा है, कि शहरों में जो है हाशरीन नकीब भेज दिए। अब यहां पर एक बात सोचने की है और वो बहुत अहम है कि जब मुकाबले में फिरौन हार गया था, चाहिए तो ये था कि वो भी मौजदे पर यकीन लाते हुए ईमान ले आता, जैसे कि जादूगर ईमान ले आए थे, लेकिन फिरौन जो है वो ईमान लाने की बजाय और ज्यादा अकड़ बैठा। एक तरफ उसने शिकस्त खाने वाले जादूगरों को जो ईमान ले आए थे उनको जो है वो सजा दी, है ना, और दूसरी तरफ जो है उसने क्या किया कि बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम का और ज्यादा मुखालिफ हो गया। अब इस पे नहीं खुश होता कि चलो ठीक है ये यहां से चले गए हैं, बल्कि नडर होकर और अपने आप को जो है वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वो इनका जो है वो पीछा करने की प्लानिंग करता है। फअरसला फिरौन, अब फिरौन ने रवाना कर दिए, भेज दिए, फिल मदाइनी शहरों में हाशरीन नकीब, ऐसे लोग भेजे जो के जमा करने वाले हैं, ताकि वो शहरों में जाएं اور اب قبطیوں کو جمع کریں، جو فرعون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس کی قوم کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیں. انہا اولائی لشرزمتن قلیلون. ایک طرف فرعون اپنے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، دوسری طرف وہ اپنے لوگوں کو اکسا رہا ہے، ان کو ترغیب دلا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے. کیونکہ اب فطری سی بات ہے کہ فرعون جو ہے جب وہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے تو لوگوں کے اندر کہتے ہیں کہ ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے اور کہ بھی اب تو مدد کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے. اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ فرعون جو ہے اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل سے. تو ایک طرف وہ کیا کرتا تھا، کرنا چاہتا تھا، ایک طرف اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی یہ ہیں تھوڑے لوگ، لیکن ایک اکیلا موسیٰ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام، اتنے زیادہ جادوگروں پر جو ہے وہ اس نے فتح پا لی. اب دوسری طرف یہ بنی اسرائیل جو کہ کسی بھی قوم جو انتہائی ذلت کی غلامی کی زندگی بسر والی قوم جو ہے، اب اس سے اسے ڈر لگ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا ہاؤلاء لشرذمۃ، کہ یہ جو ہیں شرذم ہیں. اور شرذم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ چار حرفی مادہ رکھنے والا جو ہے یہ لفظ، اس کے معنی کیا ہیں؟ بے کس اور ناتوان لوگوں کی جو ہے وہ چھوٹی سی جماعت، یعنی ایسے لوگ جو بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں، لیکن کیسے؟ پسے ہوئے، دبے ہوئے، ذلیل، رسوا. تو ایسے یہ لوگ ہیں، اور اتنی نہیں کہ پسے ہوئے، دبے ہوئے، تھوڑے ہیں، بلکہ قلیلون. پھر کہتا ہے کہ یہ قلیل ہیں، قلیل کی جمع قلیلون، قلیلین، قلیلون دونوں طرح آتی ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مٹھی بھر ہیں. تو لوگوں کو تسلی دے رہا ہے، پریشان ہو، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر اس کے جو ہے وہ ایک خوف ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ غیظ دلایا ہے، ناراض کیا ہے. غائظون جو ہے، غائظ کی جمع غائظون، غائظ فاعل کے وزن پر ہے، یہ اسم فاعل ہے. تو غیظ کیا ہوتا ہے؟ غصہ دلانا، تغیظ، غصے میں بھپرا ہوا ہونا، بہت زیادہ غصے میں ہونا، کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ غصہ دلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم ہیں، اور ہم لوگ کیسے ہیں؟ حاضرون ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے. تو ہا زال را، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ جو ہے یہ خوف کے لیے، خطرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے معنی جو ہوتے ہیں اسلحے کے بھی ہوتے ہیں. کہ جب کسی کو جو ہے وہ کسی سے خوف محسوس ہو تو وہ اس کے لیے اپنے پاس جو ہے اس کے پاس اسلحہ ہو، اس کے پاس کچھ جو ہے وہ سامان ہو جس سے وہ اس خوف کا جو ہے وہ تدارک کر سکے. تو یہ لفظ جو ہے یہ خوف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلحے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور مفسرین اور جو ترجمہ کرنے والے ہیں، اگر آپ دیکھیں گی تو مثلاً دیکھیے، ایک ترجمہ یہ ہے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں، یہ بھی ایک ترجمہ کیا کہ ہم ایک اسلحہ رکھنے والی جماعت ہیں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ فرعون جو تھا بڑا ظلم و ستم کرتا تھا، اور اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ تشدد اور کسی پر ظلم و ستم کرنے والے ہتھیار پائے جاتے تھے، بڑے سخت قسم کے ہتھیار اس کے پاس موجود تھے. تو ہم ایک مسلح جماعت ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے کہ دشمن کو کیسے نیچا دکھایا جائے، کیسے نقصان پہنچایا جائے، کیسے اس کو شکست دی جائے. ہم تیار رہتے ہیں، ہم چکنا ہیں. ایک تو اس کے اسلحہ والے معنی ہے، دوسرے کسی نے ترجمہ کیا ہے ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے، یعنی یہ کہ ڈر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ ہوشیار رہنے والے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ کسی اور نے جو ترجمہ کیا وہ کیا ہے؟ یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے خطرہ رکھنے والے، کہ ہم ان سے جو ہے وہ خطرہ رکھنے والے ہیں، یعنی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مستعد رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح جو ہے اس کے مختلف ترجمے ہیں اور معنی کیا ہیں. جیسے کسی سے جب ڈر ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے, تو آپ اس سے چکنا رہتے ہیں, ہوشیار رہتے ہیں, اور اس کے لیے پھر آپ کے پاس اسلحہ اور تیاری ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور اس طرح سے بیدار رہ کر جو وہ گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں اس پہ قابو پانا ہے. یہ مطلب ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, کہ انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے کہ ایک طرف پوری ملک میں میری جو ہے وہ شکست ہو گئی, الٹا جادوگر ایمان لائے تو اور لوگوں کے سامنے بھی پتا چل گیا لوگوں کو کہ نہیں, موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں, آپ کا کردار, آپ کی عظمت اور معجزہ اور جادو دونوں آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اور تیسری طرف یہ کہ وہ پھر یہ چلے بھی گئے ہم سے بچ بچا کر. تو یہ ساری باتیں, اب وہ تو جا رہا تھا مقابلہ کرنے کے لیے, وہ تو پیچھا کر رہا تھا ان کو پکڑنے کے لیے کہ میرے ہاتھوں سے یہ کیوں نکل گئے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فَأَخْرَجْنَاهُمْ, وہ نکلا نہیں تھا, وہ نکلے نہیں تھے, ہم نے ان کو نکالا تھا. خرجا نکلنا اور اخرجا نکالنا. فَأَخْرَجْنَاهُمْ, ہم نے فرعون کو اور اس کے سارے جو ساتھی تھے, اس کی پورے درباری اور پوری قوم کے لوگ جو تھے, ہم نے ان کو نکالا تھا. ہم نکال لائے, ہم کہاں سے ان کو نکال لائے؟ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون, باغوں سے اور چشموں سے. جنت کی جمع جنات ہے, عین کی جمع عیون ہے. ان کے چشموں سے, وہ باغوں میں تھے, وہ چشموں میں تھے. وَكُنُوزٍ, اور وہ تو خزانوں کے مالک تھے. کنوز کنز کی جمع ہے, اور کنوز جو ہے کیسے خزانے کو کہتے ہیں, ایسے خزانے کو کہتے ہیں وہ خزانہ جو کہ بکثرت جمع کیا ہوا ہو, سونا چاندی مال جو کچھ بھی ہو اس کے لیے کنوز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم ان کے خزانوں سے ان کو لے آئے. وہ مقام ان کریم, مقام جگہ ہے نا, تو یہ مقام عزت منصب کے لیے بھی آتا ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے یہ مادی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, حسی طور پہ بھی. مثلا آپ کا مقام یہ کرسی ہے نا, آپ کی یہ جگہ ہے, اور یہ کہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو کسی کا انچارج بنا دیا جائے. تو مقام جو ہے یعنی عزت کی جگہ بھی ہو سکتی ہے, اور ویسے کرسی پہ بیٹھنا بھی یعنی کوئی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کے مقام تھے, جو ان کی قیام گاہیں تھیں, جہاں پہ وہ رہتے تھے, جہاں پہ وہ بستے تھے, اور وہ کیسے مقام تھے, کریم بہترین. اور آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ کریم کے معنی کیا ہیں. کاف را میم جو ہے عربوں کے ہاں یہ لفظ جو ہے کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, انگور کے لیے, انگور کی بیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور انگور جو ہے ان کے ہاں غائط درجہ نفع دینے والا پھل تھا, غائط درجہ جو ہے وہ فیض بخشنے والا تھا. تو ان کے ہاں ان کی شاعری میں, ان کی باتوں میں انگور کا بڑا ذکر ملتا ہے. اور ان کے ہاں ایسے باغ کا تصور نہیں تھا کہ جس میں کھجورے اور انگور نہ ہو. تو اب یہاں پر جو ہے وہ کریم کا لفظ معنی کیا ہے کہ عام ان کے رہنے کی جگہ نہیں تھی کریم. اور اگر کریم لفظ آ جائے تو جگہوں میں سے بہترین جگہ, چیزوں میں سے نفیس چیز, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جگہوں میں سے اچھی جگہ. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بہترین جگہ سے ان کو جو ہے وہ باہر لے آئے. کذالک, اسی طرح. اب آپ دیکھیں کذالک, پوری بات کو اس طرح سے سمیٹ دیا کہ فرعون تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہوں وہ مقابلہ کروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کذالک, کہ یہ اس کی موت کا پیغام تھا. وہ غصے میں تھا, وہ بھاگتا ہوا آیا, لیکن معنی کیا ہے, معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کے باغوں, چشموں, خزانوں, عمدہ قیام گاہوں سے باہر نکال کھڑا کیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں قرآن میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ ان کے چشموں سے نکالا گیا, جب ان کے घरों से निकाला गया तो उनका हाल क्या था और वो चाहते क्या थे? वो तो ये समझ रहे थे कि हम इनको काबू में ले लेंगे, हम इनको पकड़ लेंगे, हम इनको सजा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उल्टी तदबीर जो थी वो हो गई, उल्टी हो गई सब तदबीरें, है ना, सब तदबीरें जो थी फिरौन की जो थी वो उल्टी हो गई। तो गोया के खुद शिकार करने वाला बनी इसराइल का खुद ये लश्कर जो था वो मौत का शिकार हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कहते हैं, वाउरसना बनी इसराइल, और हमने बनी इसराइल को इन सब चीजों का वारिस बना दिया। ये बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो है वाउरसना हा की जमीर किसके लिए आई है, जन्नात, उयून, कुनूज, मकामिन करीम, इन सब चीजों की तरफ आई है जिनसे जो है वो फिरौन और उसके साथियों को निकाला था। तो इसका अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मालिक बना दिया। अगर मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर इसके मानी ये लिए जाएं कि मिस्र में जो कुछ भी खजाने, बागात, महल, चश्मे थे उसका मालिक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों को बना दिया, तो इसके मानी ये हैं कि फिरौन के डूब जाने के बाद, गर्क हो जाने के बाद बनी इसराइल के लोग फिर मिस्र में वापस गए होंगे और दौलत फिरौन की इनको मिली होगी। लेकिन कहते हैं कि तारीख से ये बात साबित नहीं है कि बनी इसराइल के लोग दोबारा मिस्र में फिर गए हैं। और कुरान मजीद में भी जो है वो हमें ये इससे कुरान मजीद से भी इसकी दलील नहीं मिलती कि वो लोग जो है वो वापस गए हों। और फिर इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने वही बाग, चश्मे, खजाने और महलात बनी इसराइल को बख्श दिए जिनसे, यानी जिस तरह के उनके पास थे ना उसी तरह के अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिलिस्तीन में बख्श दिए। ये एक दूसरा मानी है और ये यहाँ पे मुराद है कि अल्लाह ताला ने वही नेमते बनी इसराइल के लोगों को जो है वो फिलिस्तीन में अता कर दी। और इसकी दलील में सूरत आराफ की वो ये आयत पेश करते हैं, फंतकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया, फागरकनाहुम फिल यम्मी, और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया। क्यों, लिअन्नहुम कज्जबू बिआयातिना वकानू अनहा गाफिलीन, के फिरौन और उसके साथी जो थे उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और इनसे बेपरवाह हो गए थे। वाउरसनल कौमल्लज़ीना, और हमने वारिस बना दिया उस कौम को जो कानू युस्तदअफूना, जो कमजोर समझे जाते थे, वो लोग जो के जिनको कमजोर बनाकर रखा गया था, तो हमने वारिस बना दिया उस कौम को, कानू युस्तदअफूना मशारिका मशारिकल अर्दी व मगारिबह अल्लती बारकना फीहा, उस मुल्क के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया जिसे हमने बरकतों से माला माल किया था। तो बरकतों से माला माल सरजमीन के लिए कुरान जब लफ्ज बोलता है तो किस कंट्री के लिए बोलता है, फिलिस्तीन के लिए, के इलाके का नाम लिए बगैर अल्लाह ताला ने उसकी सिफत बयान की है। यह है एक दलील कि फिलिस्तीन ही में वो चीजें अल्लाह ने उनको दे दी। आयत नंबर 136 137 सूरत आराफ। दूसरी दलील सूरत बनी इसराइल में आप पढ़ चुकी, इलल मस्जिद अल अक्सा लजी बारकना हौलहू, नंबर दो। सूरत अंबिया में तीसरी दलील, व नजैना हु वलूतन इलल अर्दि लती बारकना फीहा लिल आलमीन वले सुलेमान रीहा आसिफतन तजरीब अमरही इलल अर्दि लती बारकना फीहा। इसी तरह सूरत सबा में, अल कुरल्लती बारकना फीहा, तो शाम और फिलिस्तीन की सरजमीन के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो बरकत के और नेमतों के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हैं। कजालिक वाउरसनाहा बनी इसराइल, इस तरह हमने बनी इसराइल को इन सब चीजों का मालिक बना दिया। तो अब आप देख लीजिए, मुफस्सरीन कहते हैं कि फिरौन ने जब हरकारे भेजे कि जाकर वो सारे कौमे कुप्ती कौम को इकट्ठा कर दें ताकि बनी इसराइल का मुकाबला किया जाए, तो कहते हैं 12,000 हाशिरीन थे जो फिरौन ने भेजे, 12,000 की तादाद में जो मुल्क में फैल गए मिस्र में ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का मुकाबला करने के लिए। तो फिरौन जो था वो पूरी तरह से ये चाहता था कि किसी तरह भी ये लोग जो है वो बच कर ना जा सकें। और अब दूसरी तरफ जो मुफस्सरीन फिर क्या बताते हैं कि ये जो कहा कि इन हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून, कि ये ग्रोह बहुत ही कम तादाद में है, इसकी तादाद जो है कहते हैं कि तकरीबन 6 लाख बताई जाती है। किसकी तादाद है ये? बनी इसराइल की। तो फिर बनी इसराइल की जब तादाद 6 लाख के करीब बताई जाती है, तो फिरौन ने इनको शिरजिमतुन क्यों कहा? हकारत के तौर पर कि बेशक ये 6 लाख भी हैं, मेरी नजरों में इसकी कोई वक्त नहीं है, मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है, तादाद जो है इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेशक ये 6,000 या कुछ इसके ऊपर थे, उसने 12,000 हरकारे भेजे, पूरी अपनी कौम को जमा किया, और वो तो आप सोचे कितनी बड़ी कौम होगी, और लाखों की तादाद में पीछा किया, लेकिन वो सारे के सारे जो थे अल्लाह ताला ने उनको जो है इस तरह से बाहर निकाला कि बनी इसराइल को इसका मालिक बना दिया। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फातबाउहुम मुशरिकीन, फातबाउहुम, और उन्होंने जो है वो पीछा किया। ताकुब में निकल खड़े हुए कौन लोग? फिरौन और उसके साथी जो थे, बस वो निकल खड़े हुए क्योंकि उन्होंने पीछा करना था ना, वो निकल खड़े हुए, तब वो ताकुब में निकले मुशरिकीन, सुबह होते ही, सूरज निकलते ही, जब सुबह हुई और सुबह होते ही फिरौन को जब पता चला कि बनी इसराइल रातों रात यहां से निकल खड़े हुए हैं, तो उसने क्या किया कि फौरन जो है उनके ताकुब के लिए उठ खड़ा हुआ। फलम्मा तरा अल जमानी, फिर जब दोनों जमातों का मुकाबला हुआ, तरा का मत असल में तरा आन था, नून तस्मीये का गिर चुका है, जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा, जब दोनों जमातें आमने सामने हुई, जमान ये भी आन जो है तस्निया का सिगा है ना, तो जब दोनों ग्रोहों का आपस में आमना सामना हुआ, जब दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे को देख लिया, एक ग्रोह था मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी बनी इसराइल का, दूसरा था फिरौन और उसके साथी जो कुप्ती थे उनका, जब दोनों का आपस में आमना सामना हुआ, काल असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी चीख उठे, पुकार उठे कि बेशक हम तो पकड़े गए। इस मफूल है ये मुद्रकून जो है, और दाल रा काफ दरा का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना, नीचे उतरना, पकड़ लेना, पकड़ने के मानी इदराक, जैसे किसी का इदराक हो जाए, किसी को आप हासिल कर लें। अब वो चीख उठे कि हम तो हैं बिल्कुल, हम पकड़े गए। इसका मतलब क्या है? क्यों मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जो थे वो चीख उठे? असल बात क्या थी कि वो जा रहे थे और जो है वो आगे उनके समंदर था, रातों रात वो सफर तो कर लिया उन्होंने, और कहते हैं कि बहरे कुलजम के किनारे, बाहर जो था वो बहरे कुलजम था, जब वहां पे वो पहुंचे, आगे समंदर था ठाठे मारता हुआ, पीछे फिरौन का लश्कर था ठाठे मारता हुआ, सरों का अंबार था, सर ही सर उसका अंबो था, और वो चीख उठे कि लो जी अब तो मारे गए। और हमें तो ये रवायात भी मिलती हैं कि वो लोग चीखने लगे और पुकारने लगे और कहने लगे कि अब हमें लौटना नसीब नहीं होगा, अगर हमें मरना ही था, अगर हमारी कब्रें बननी ही थी, तो वहां मिस्र में थोड़ी जगह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें वहां से निकाल कर ले आए। आप देखें बनी इसराइल का हाल, कि उनको उनका हाल वो नहीं था कि अल्लाह हमारे साथ है, वो चीखने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कौला कल्ला, डांट लगाते हैं, फिर उनको एक डपट डांट डपट उनसे के साथ करते हैं, उनको कहते हैं कल्ला हरगिज नहीं, हो नहीं सकता कि हम पकड़े जाएं, हो नहीं सकता कि हमें नुकसान हो, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, सयहदीन, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अब आप देख ले सयाह दीनी था, अगला या जो है वो गिर चुका है, वो मुझे इस आफत से बचने का रास्ता बताएगा। ये वही बात है कि गारे सौर है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह घबराए हुए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का सफर है और वो कह रहे हैं अबू बकर ला तहजन इन अल्लाह माना। पैगंबर का किरदार कितना खूबसूरत है, यह है एक मोमिन का किरदार। उसको ना अल्लाह की बात पर यकीन होता है, सच्चा यकीन। मैंने दुआएं मांगी, मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, और जो कुछ और हो रहा है इसमें भी मेरे लिए यकीनन कोई खैर होगी। आपने कोशिश कर ली, हमने कोशिश कर ली, मेरा रब मुझे रहनुमाई करेगा, वो मुझे जाया नहीं करेगा, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप और मैं भी अपना अपना जायजा लें। मैं पाकिस्तान जाना चाह रही थी, मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया, मैं जाना चाह रही थी और मैं ना जा सकी। बहुत दिल चाह रहा था मैं चली जाऊं, है ना, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद खुद ही मेरे शौहर ने मुझे भेज दिया, और अब मैं सोचती हूँ तो मुझे क्या महसूस होता है कि इसमें ही खैर थी कि मैं उस वक्त नहीं गई और अब गई ना। तो हम एक बहन ऐसे कह रही थी, और असल बात क्या है कि हमें नहीं पता होता कि हमें खैर किसमें, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारे लिए खैर किसमें है ना। तो आइए अपने दिलों से ये जो परेशानियां हैं, ये जो मसाइल हैं, इनको निकाल बाहर करें। मैं नहीं अभी शादी करना चाहती अपने बच्चों की। मेरे बच्चे ने कहा कि इतना तंग किया बाजी, फिर मैंने शादी कर दी, और बाजी उस दिन से हमारे घर में सुकून हो गया। और माशाल्लाह बच्चा पढ़ता भी बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है, और मुझे अब ये खतरा भी नहीं है कि मेरा बच्चा इधर उधर भटक जाएगा, है ना। तो बाज़ औक़ात जो है आप जो चाहते हैं हालात उससे हटकर मुतालबा कर रहे होते हैं, तो आप सरे खम कर दें, आप उसको बनाने की संवारने की कोशिश करें। बाज औरतें कहती हैं जी हमने तो फिर शादी करनी ही नहीं, जाए फिर जाए जहां जाता है कर ले, हमने शादी में शिरकत ही नहीं करनी, और इस तरह की ढेरों बातें। तो असल बात क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते, इन्नमा या रब्बी सयादीन, हरगिज नहीं मेरा रब मेरे साथ है। काश के मुझे और आपको अपने रब की मैयत का एहसास हो जाए। आप ही में से एक बहन कहती है कि बाजी सबकी इमिग्रेशन होगी, सबने जितनों ने अप्लाई किया था एक मेरी नहीं आई ना, है ना। मेरा दिल बड़ा परेशान होता है मेरी क्यों नहीं आई ना, यकीनन इसमें भी कोई खैर होगी। मोमिन के सोचने का अंदाज ऐसा होता है, यकीनन इसमें मेरी खैर होगी, मेरे लिए कोई खैर होगी। समंदर में, हम न्यूयॉर्क में रहते थे, और पास से न्यूयॉर्क में जो समंदर गुजरता है, तो किसी दूसरी अमेरिका की स्टेट से जहाज आया, और कुछ लोग चांस की सीट पर थे, यानी उनको अमेरिका से वो जहाज मिस्र जा रहा था, और जो है वो जो चांस वाले थे उनकी सीट कंफर्म ना हुई, उनको उतरना पड़ा। वो बड़े गमजदा थे, ईद का मौका था कोई, और वो जरूर मुसलमान थे, जाना चाहते थे, वो उतर पड़े। कुछ और लोग उनकी जगह जो कंफर्म थे वो गए, और इसी तरह कुछ कंफर्म जा रहे थे लेकिन वो उतर गए कि उनको कोई और काम था, और वो जहाज जो था वो समंदर के अंदर गिर कर जो है वो खत्म हो गया, उसका पता ही ना चला कि वो जहाज कहाँ गया। फिर अगले दिन अखबारात में उनके बयानात और उनकी बातें कि हम रो रहे थे कि हमें सीट कंफर्म क्यों नहीं हुई, और हम क्यों नहीं जा सके, और जिनकी मौत लिखी थी वो चले गए। तो असल बात क्या है, आप और मेरी और आपकी जिंदगी में जो भी हालात गुजर रहे हैं, जिंदगी तो है ही इम्तहान, ये तो भूल जाएं आप और मैं कि जिंदगी फूलों की सेज है। फूल मुस्कुराता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, खुशबू देता है, लेकिन हमेशा कांटों में मुस्कुराता है, कांटों के अंदर मुस्कुराता है। कांटे उसका हुस्न का जरिया है, उसकी बनावट और सजावट है ना। और फूल लेना है, कांटों से हाथ तो जख्मी होंगे ना, कांटे तो टहनी पे लगे हुए ही होंगे ना। तो ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, और फूलों की तरह मुस्कुराएं कांटों के दरमियान रहते हुए, ये है पैगाम इस्लाम का और कुरान का और अंबिया का। अंबिया जो थे वो फूल थे, और वो अंबिया का किरदार फूलों की तरह मुअत्तर है ना, हर एक को खुशबू देता हुआ, खुशबुएं बखेरता हुआ, हंसते मुस्कुराते हुए, मुसीबतों के पहाड़ उन घर पर आए और उनको सहते हुए वो गुजर गए, और एक ही नारा लगाते रहे, इन्नमा या रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयादीन, अनकरीब वो मुझे जो है मेरी जरूर रहनुमाई करेगा। और काश के मेरा और आपका ईमान इस तरह जड़ पकड़ ले, काश के आज भी अगर ये ईमान मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाए, तो फिर क्या है कि मेरी और आपकी दुनिया ही बदल जाए। फाउहीना इला मूसा, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, क्या वही की, अनिद्रिब बी असा कल बहर, के आप जो है क्या करें, मारिए, बी असा लाठी को लाठी के साथ मारिए का अपनी अपनी लाठी को मारिए कहाँ, अल बहरा समंदर में, बहरे कुलजम में, जहां आगे समंदर आ गया है, अब लोग परेशान हो रहे हैं, आप अपनी लाठी को वहां पे मारिए, फन फला का बस फट पड़ा, फट गया अचानक फन फला का, फौरन बस फट पड़ा। क्या फट पड़ा? वो जो बहरे कुलजम था वो फट गया, यकायक समंदर फट गया, फकान कुल्लो फिरकिन, और हो गया हर फिरक। फिरक जो है जैसे अलग हो जाना, फिरके के लिए भी आता है ना, जो अलग हो जाता है हिस्सा, तो हर टुकड़ा जो था फकाना बस हो गया, काना यहाँ पे सारा के मानी में है, बस वो हो गया कुल्लो फिरकिन। फिरक जो है ये समफेल है कि हर टुकड़ा हो गया का मानिद, जैसा के तौदिल अजीम, तौद पहाड़, अजीम बहुत बड़ा। तो हर पानी का टुकड़ा जो था वो ऐसे हो गया जैसे के बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ हो। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि कुदरते खुदावंदगी का करिश्मा देखें, अल्लाह की कुदरत का आप करिश्मा देखें, कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो है वो इम्तहान हुआ, और उनका एतमाद था अल्लाह ताला पर, और मूसा अलैहिस्सलाम तो 100% अल्लाह पर एतमाद पर कामयाब हुए, लेकिन उनकी कौम जो थी वो इस एतमाद में कामयाब ना हो सकी, वो नाकाम रहे ना, इसलिए तो चीख उठे और बातें करने लगे कि आगे समंदर और पीछे फिरौन, और हम तो मारे गए। अब कहते हैं कि तौरात से भी ये बात पता चलती है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी असा को समंदर पर मारो, कहते हैं इसके बाद ऐसी हवा चली कि समंदर का पानी फट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दोनों तरफ पानी की दीवार खड़ी हो गई और बीच में से खुश्क रास्ता निकल आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर इस रास्ते पर चल पड़े। अच्छा, अब आप देखिए कि तौरात में मजीद क्या लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और इनके दाएं और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था, और मिस्रियों ने ताकुब किया और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार इनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। खुद और फिर मजीद है, और खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्री और इनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, और खुदावंद ने समंदर के बीच ही में मिस्रियों को तह उबाला करके रख दिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो फन फला का फकाना कुल्लो फिर किनकत तौदिल अजीम के दो मानी जो हैं वो सामने आते हैं। एक राय तो ये है कि समंदर के बस दो टुकड़े हो गए, यानी बीच में दो रास्ते जो थे वो बन गए, है ना, तो समंदर जो था वो दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में सड़क बन गई जिससे वो लोग गुजर गए। और पानी कैसे खड़ा हो गया? आप सोचिए, पानी लिक्विड बहने वाला पानी दाएं और बाएं दोनों किनारों पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे के साकिन और जमा हुआ पहाड़। तऊद, तऊद जो है पहाड़ के लिए लफ्ज इस्तेमाल, अरबी जबान में कितने बड़े पहाड़ को कहते हैं, और आप देखेंगे तऊद खुद ही बड़ा, और साथ में अल्लाह ताला ने अजीम की सिफत इस्तेमाल की, इसका मतलब पहाड़ जो था वो बहुत बड़ा था, पानी दोनों तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। पानी का काम तो बहना है, वो खड़ा हो ही नहीं सकता, खड़ा होता ही नहीं, फितरत तब्दील हो गई पानी की, है ना। तो ये क्या था? ये भी उस असा का मोजा था। मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि ये खुश्क रास्ता जो दो मतलब उसका जो है वो रास्ता बना था, तो ऐसा नहीं था कि दाएं बाएं दो पहाड़ थे और बीच में रास्ता, तो कहते हैं असल में वो 12 रास्ते बने थे, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, और 12 कबीले जो थे हर कबीले के 12,000 अफराद थे जो हिजरत करके आए थे, इस तरह इनकी तादाद तकरीबन 1,44,000 बनती है, और ये तकरीबन बाज कहते हैं 1,20,000 थी या इससे ऊपर नीचे। फिरौन के लश्कर की तादाद से ये तादाद बहुत ज्यादा थी। तो हर ग्रोह जो है वो अपने अपने रास्ते से जो है वो आगे चला गया। अब आप देखिए सूरत ताहा में अल्लाह ताला ने क्या कहा, फद्रिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसा, इनके लिए समंदर में सूखा रास्ता बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया। तो समंदर पर असा मारने से सिर्फ इतना नहीं हुआ कि पानी दोनों साइडों पर पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया, बल्कि रास्ता भी खुश्क हो गया, कीचड़ नहीं था, ऐसा नहीं था जिसमें चलने में उनको मुश्किल होती। और इसके अलावा सूरत दुखान आयत 24 से क्या बात पता चलती है कि जब जो है समंदर खुश्क हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, अब पीछे थे फिरौन और उसके साथी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहते हैं चाहा कि मैं दोबारा अपनी असा, मैं दोबारा जो है ना उसको ऐसा कर दूं कि फिर वो पानी बन जाए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया, सूरत दुखान की आयत 24 में क्या हुक्म दिया, वत रुकिल बहरा रह हुआ, समंदर को उसी हाल में पहाड़ों की तरह खड़ा छोड़ दो, इसी तरह खुश्क रहने दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे थे फिर पानी बना दें, लोग भी परेशान थे कि अब सड़क बन गई, हम तो जा रहे हैं, फिरौन भी पीछे आता जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मत रुकिल बहरा हुआ कि इसको ऐसे ही रहने दो। अल्लाह की मर्जी सिर्फ यही नहीं थी कि बनी इसराइल इन फिरौनियों से निजात पा जाए, बल्कि ये भी थी कि जालिम कौन कौम जो है, जालिम कौम जब समंदर के बीच में पहुंच जाए तो उसको गर्क करके सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए, निस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो कुरान की तफसीर जब कुरान से आप करते हैं, यानी एक ही वाक्य में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह पे जो आयतें बताई हैं, तो पूरा मफहूम जो है पूरी तरह खुलकर वाजे होकर जो है वो सामने आ जाता है कि ये थी अल्लाह की शान और ये थी अल्लाह की बेनियाजी। और फिर अल्लाह ताला ने जो है अब पानी को फिर जब आपस में मिलाया, और पानी जब आपस में मिला तो फिर क्या था कि वो लोग जो थे वो सारे के सारे डूब गए। क्या कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, वाजलफना सम्मल आखरीन, फिर उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। अजलफना जालाम फा के मानी होता है करीब करना, करीब कर दिया हमने, सम्मल आखरीन दूसरे ग्रोह को, ये कौन सा ग्रोह था, फिरौन और उसके साथी। वह अंजैना मूसा, और हमने निजात दे दी मूसा अलैहिस्सलाम को, किसने निजात दी, हमने दी, कौन, अल्लाह रब्बुल इज्जत। वह मम्माहू, और जो उसके साथ थे अजमाइन सब के सब, ये कौन थे, बनी इसराइल के लोग। तो मूसा अलैहिस्सलाम और इनके तमाम साथियों को तो हमने बचा लिया, तुम अग्रकनल आखरीन, और दूसरों को हमने जो है वो डबो दिया, दूसरों को हमने गर्क कर दिया। इन नफीजा लिका लाया, इस वाक्य में एक निशानी है, इस वाक्य में एक इबरत है। अब आप देखें कि इबरत क्या है इसमें, कि मक्का के लोग जो थे वो मौजजात मांग रहे थे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पिछली जो कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई जा रही है कि असा का मौजजा देखकर लोग ईमान ना लाए, है ना, तो हर धर्म लोग खुले खुले मौजजात देखते हैं, ईमान नहीं लाते, जादूगर तो ईमान लाए, फिरौन और बाकी लोग तो ईमान ना लाए। तो जो लोग ईमान नहीं लाते, फिरौन सरदार और उसके तमाम लश्करी और साथी जो थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, सुम्मा अगरकनल आखरीन, उनको डबो दिया, है ना। तो असल बात क्या है कि जो लोग सरी अलामते देखकर, खुले मौजे देखकर ईमान नहीं लाते, फिर अल्लाह ताला का अजाब उनको दबोच लेता है। पानी ने दोनों तरफ से उनको दबोचा, और अल्लाह के अजाब में वो ऐसे घिरे कि फिरौन जैसा नडर और अकफरुल काफिरीन चीख उठा, आमनतु अन्नहु ला इलाह इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। सूरत यूनस आयत 90 में आप पढ़ चुकी हैं, सूरत यूनस आयत 90 में, कि फिरौन ने कहा कि मैं ईमान ले आया उस पर जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और उस पर मैं ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी जो है मुसलमानों में से हूँ। और अल्लाह ताला क्या ऐलान करते हैं कि मैं डूबने वालों की तौबा कबूल नहीं करता, यानी जब सामने मौत को देख लिया, جب غیب جو تھا وہ سامنے آ گیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، اب جو ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کو کہہ دیجئے کہ یہ مطالبات کرتے ہیں، یہ معجزات مانگتے ہیں، یہ ہسٹری نشانیاں مانگتے ہیں، نشانیاں دیکھ کر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیا کرتا ہے، ان کو ڈبو دیا کرتا ہے، ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے عزیز ہے، قدرت رکھتا ہے کہ آن میں پانی کی فطرت کو مٹا کر پانی ختم ہو جائے اور پانی پہاڑ بن جائے، قطعدل عظیم ہو جائے اور فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب جائیں. اور رحیم ہے، جادوگروں کے لیے رحیم ہے کہ وہ ایمان لے آئے، بی بی آسیہ کے لیے رحیم ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رحیم ہے. ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پچھلی زندگی کی لغزشیں، خطائیں جو ہیں وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ پیغام ہے جو اس سبق سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار مجھے اور آپ کو اپنانا ہے. ایک طرف غلطیوں کا اقرار کرنا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، دوسری طرف ہمیں حق کا پیغام دینا ہے، خواہ مخالف فرعون کی طرح جو ہے وہ جابر اور قاہر کیوں نہ ہو. تیسری طرف جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اور قوم جو ہے اس کو، انسان جو ہے وہ ان کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دینی ہے. اور چوتھی طرف جو ہے وہ اللہ کی معیت کا احساس رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آزمایا جائے گا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور آزمائشوں میں پورا اترنا ہے جیسے کہ جادوگر جو تھے پھر وہ آزمائش سے نہ ڈرے، ایسا ایمان لائے، کہا کہ اے فرعون تو جو چاہے کر لے، اب اس ایمان اس دل سے نکل نہیں سکتا. تو یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.